लाल आगे आए बैठे। या वाणी के कारण करे कई विदताव, सो मुख केते कहूं ये जो हुए जो बिना हिसाब। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदरदास जी कल बताया था कि संसार के जितने भी ग्रंथ हैं वो जिस युग में आए वो सत्य है, लेकिन निराकार से आगे वेदों ने कहा अवश्य ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एको ब्रह्म द्वितीय ना अस्ति। पर वो पार ब्रह्म कौन है, उसका स्वरूप क्या है और उनका धाम कहाँ है, कोई जवाब नहीं। उसके बाद त्रेता युग आया तो राम भगवान ने तो साफ क्लियर कह दिया, और उसके बाद द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण ने भी साफ कह दिया कि मैं भी यहाँ पर हे अर्जुन तेरी तरह से लाखों बार जन्मता और मरता हूँ। और उत्तमा परिषद से जो अन्य परमात्मा इसी उदाहरण था। ठीक है, लोग गीता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पर कर्म कांड की दीवारों के अंदर जकड़े हुए, कभी नहीं सोचा भी जब हमारे मूल ग्रंथ कहते हैं ब्रह्म सत्य है और यहाँ है नहीं, फिर उठा के कण कण में कह देना, अपने को भ्रांति में डालना और बाकियों को डालने वाली बात थी। फिर उस पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान के वास्ते लक्ष्मी जी ने सात कल्पान तपस्या करते हुए महाविष्णु नारायण जी से पूछा, सात कल्पान तपस्या करके भी उन्होंने कहा लक्ष्मी तू जिद के अंदर क्यों बंधी हुई है, जब तक पराशक्ति इस दुनिया में आ नहीं जाती तब तक जब हम ही वर्णन नहीं कर सकते तो दुनिया वाले क्या करेंगे। फिर उसका कल का क्या था, कईयों या वाणी के कारण क्या क्या दुख उठाए, कईयों ने बड़े तपसन किए, बड़े अनसन नेम किए, भैरव भी झांप खाए, तिल तिल देह भी कटाई, कई संधान साधे परमात्मा की पहचान के लिए, कईयों ने देह भी जला दिया, लेकिन कोई भी निराकार से आगे जा रही, क्योंकि ये जितने भी हमारी तपस्या हैं, योग साधना है, व्रत है, जप है, हवन है, या जो भी अष्टांग योग है या जो कुछ भी है, ये देह से है। बस इतनी सी बात जब समझ आ जाएगी भी ये तो जो कुछ हम कर रहे हैं अपने तन से कर रहे हैं, और तन का फल किसको मिल रहा है, जीव को। अब जीव जो है इन कर्मों के बंधन के अंदर आवागमन के चक्कर से बाहर निकलता ही नहीं है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा हो जाता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मोलता है। तो फिर अर्जुन ने यही बात कही थी, प्रभु फिर जब अच्छे कर्मों का भी फल भुगतने के लिए रीवर्थ दोबारा जन्म लेना है तो फिर अच्छे कर्मों का फल का फायदा ही क्या है, मुझे ये बता दो कि कर्मों से बचूं कैसे और मैं भव से पार कैसे हो। कहना कि वो उत्तम पुरुषा के साथ जब तक संबंध नहीं होता, और संबंध कैसे होगा जब तक पराशक्ति दुनिया में आती नहीं। इसलिए सुंदरदास जी काली युग का और इस वाणी का ये महत्व है, और ये वाणी जो है एकदम कल इस निराकार से आगे कहां की पहचान कराती है, निराकार के पार जहां कोई जा नहीं सका, फिर पार के भी पार और उससे पार परम धाम जो है उसका वर्णन शास्त्रों के प्रमाणों के हिसाब से। अब स्वामी जी कहते हैं सुंदरदास जी जब हम ब्रिज में थे, कहो तो पढ़ देता हूं, सार सार बताते चले तो थोड़ा जरा आगे हो जाएगा, कि ब्रिज में आए केवल राजी को पता था, अक्षर की आत्म सुख देख रही थी, लेकिन कहते क्या हैं कि क्यों हमें सुध नहीं आई, क्योंकि हम क्या देख रहे थे, सपना। अब सपने में किसी को भी असल तन के सुखों का पता नहीं होता, जैसे कल भी बताया था कि हम रोज रात को सपना देखते हैं, तो जब हम सपना देख रहे होते हैं ना तो असल घर की सुध होती है कि हम कहां हैं, और ना ही असल शरीर का पता होता है। इसी तरह स्वामी जी कहते हैं कि जब ब्रिज में आत्माओं को उतारा तो एकदम जब पहले उतरी थी तब तो होश था, क्या कि कब मिल से हम अपने धनी, तब चाहना उपजी अति घनी, कब मिल से हम अपने धनी, और फिर धीरे धीरे वो चीज विस्मृति होती गई और माया हमारे साथ लग गई, बाल बच्चे परिवार कुटुंब बविला उसी में गुम होगी। 11 साल के अंदर ही धनी को परपुरुष कह दिया और शरीर के पतियों को अपना कह दिया। स्वामी जी कहते ये होना ही था, क्योंकि उस समय जागृत बुद्ध नहीं थी, इसलिए हमें होश नहीं आया। अब उसके बाद फिर जब ये चीज है समझने वाली कि जो हम समझ नहीं पाते हैं और जहां तक आज दिन तक भूले हुए थे, कहते हैं स्वामी जी कहते हैं कि जब हम रास में गए थे वो तन भी नहीं था। राज जी ने जो पहला तन धारण करके लीला कर रखी थी वो कितने दिन तक किया? 11 साल। और अब रास में जाके जो एकदम तन धारण किया तो वो किशोर तन धारण किया नया। क्यों? ये लीला ब्रज की हमारे लिए आत्माओं के लिए थी, और वो लीला अक्षर ब्रह्म ने जो मांग की थी कि मुझे परम धाम की लीला दिखाओ, उसके वास्ते वो नया तन धारण किया। उसकी 2-4 चुपैया फिर आगे चलते हैं। ये 8-10 चुपैयों का सार मैंने आपको बता दिया। ए पियू स्वरूप नौतन रास में, ए पियू स्वरूप नौतन नौतन सिंगार, ध्यान के साथ, ने हमारा नौतन नौतन आकार। प्रेम भी हमारा नौतन हुआ। क्यों? वहां हम भूले हुए थे और रास में जाकर हमें भी जागृत अवस्था आ गई तो हमें पहचान लिया। तो वहां ने भी कौन सा था? परम धाम वाला, क्योंकि अक्षर ब्रह्म को वो लीला करके दिखानी थी। ये अक्षर के वास्ते लीला नहीं थी, ब्रिज वाली ब्रह्म शिष्य के वास्ते लीला थी, इसलिए भूल गई। और यही बात श्री राजी महाराज ने परम धाम में कही थी कि भाई कूदते हो तुम अर्श में अपने इशक के बल, ना रहसी ये सुध ना रहसी अकल। अब परम धाम वाली सुध अकल तो यहाँ है नहीं, और यहाँ की अकल कौन सी है? सपने। अरे भाई इतना बताने पर भी थोड़ा ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा? और सपने के तन है। अब स्वामी जी कहते हैं वो रास की लीला जो की तो हर चीज नौतन बनाई, जमुना तट भी नौतन, पशु पक्षी भी नौतन, क्योंकि वो अखंड है। यहाँ के पशु पक्षी वहां नहीं जा सकते जब तक राज्य इनको अखंड ना करना जाए, इसलिए पशु पक्षी ने जमुना तट ने जमुना भी नहीं बनाई, चंद्रमा भी नया खिलाया, कुंज ने कुंज के मन अति सुंदर करके हर चीज जो है नई की। अब स्वामी जी कहते हैं उसमें थोड़ी सुध तो रही, लेकिन जागृत भी है और नींद भी है, लेकिन वहां परम धाम की सुध, वहां अखंड है परम धाम की सुध नहीं है। लेकिन फिर जब ब्रेहा दिया कि कुछ तो इन तो ध्यान आ जाए, तो फिर ब्रेहा के बाद लीला हुई, और उसके बाद मांगा क्या कि धनी ये वृंदावन हमको नहीं चाहिए। अब सोचिए कि परम धाम की याद आते ही वो वृंदावन जो ये दुनिया वाले जानते नहीं, इस वृंदावन के पीछे भाग रहे हैं। हालांकि पढ़ते रहते हैं नित वृंदावन नित गोकल और जाते यहीं पर हैं, नहीं सुधरना पड़ेगी। इसी तरह से अब वो तो प्रैक्टिकल आत्माओं ने वहां पर देखा, इसलिए कहा कि हे राजी महाराज ये वृंदावन भले कितना सुखदायी है, ब्रिज से लाखों सुख हैं, यहाँ पर अखंड लीला है, सब कुछ है, पर यहाँ तेरा जो बिछड़ जाना है वो हमारे लिए अब ये सारा अग्नि के समान है, इसलिए हे धनी हमें वहां ले चलो जहां हम तुमसे और तुम हमसे कभी भी जुदा ना हो। अब इस तरह से ध्यान के साथ, या बिदलीला दो करी सिधारे वतन, ये बात जब ये बात हम समझ लेंगे तो फिर ब्रिज और रास की लीला से हमारा कोई भी संबंध, बोलो, नहीं, उन तनों से हमारा कोई मतलब नहीं। वहां सुध थी कि हमारे धनी है, हमें ले चलो वहां परम धाम। इसलिए जब परम धाम में राज जी चले गए, श्यामा जी परम धाम में चली गई और हम परम धाम में चले गए, तो अब सपने से हमारा मतलब, अब जब परम धाम में पहुंच जाएंगे, जागृत में पहुंच गए, निज सुख में पहुंच गए, तो फिर बोलो ब्रिज और रास के स्वरूप या ब्रिज और रास की लीला से कुछ मतलब है? अवश्य चुपैयों से लो ताकि क्षण से मिटे। सुंदर सा जी किसी का दोष नहीं है, आज दिन तक वाणी जाहिर नहीं हुई, इसलिए कोई कहे कि ये बता रहे ना 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 ना, मेरी 2 साल के 3 साल के पहले कैस्ट है देखो, कृष्ण कृष्ण करते थे। जब वाणी मथन हुई और ये सारी चीजें खुल गई, बहुत पश्चाताप भी किया, फिर अफसोस इसलिए नहीं किया कि धनी के हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। जब समय अब उन्होंने जाहिर किया है तो फिर हमारा भी क्या दोष। इसी तरह हम किसी बड़ों को या और अगुणों को दोष दे, ना 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 ना, राज्य का जैसे जैसे उन्होंने लीला रचा रखी है वैसे वैसे सोई पल सोई घड़ी और सोई समय से पहले कुछ भी होने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब या विद, अब ब्रज और रास की विद बता दी कि कैसे लीला की, कैसे हुआ और फिर अब कैसे परमधाम चले। या विद दो लीला करी सिधारे वतन, हम सब राजी श्यामा जी और आत्माएं जो वतन से आई थी वो वहां पर। अब यहां सवाल होता है फिर ईश्वरी सृष्टि कहां है? ईश्वरी सृष्टि जब तक दोबारा ब्रह्म सृष्टि इस ब्रह्मांड में नहीं आई तब तक ईश्वरी सृष्टि रास वाले तनों में बैठी थी, क्योंकि वो हमारे साथ वहां पहुंची थी, वहां देख रही थी, अब वो उसी तरह से देख रही। अब जब हम आए यहां, श्यामा जी आए, तो वो सृष्टि भी हमारे साथ रास से यहां पर आ गई, उनका घर वही था। अब आगे चलिए, अब जो मनोरथ मूल का हुआ नहीं पूर्ण, जो मूल का मनोरथ था वो पूर्ण नहीं हुआ था, इस वास्ते किन सुध ब्रह्म विलास के यो रही धाख मन। वो ब्रह्म विलास जो देखा था और फिर याद आया कि हम तो राजी को कह गए थे कि हिरणी 100 बेर आजमा के देख लेना तो भी हम भूलेंगे। जब परम धाम वापस पहुंचे तो सारा कुछ याद आया कि जो कुछ भी हम कह के गए थे उसमें से तो एक भी पूरा, क्योंकि सपने में आ गए, वो याद ही नहीं रही कि राज्य महाराज को तो क्या कहना है। आज भी सुंदर साजे आ बैठे, अगर हम सोचें कि भाई क्या हम परम धाम के हैं, अब वाणी से यकीन आ रहा है समथिंग एल्स, नहीं तो हम शरीर के कर्मों को देख कर क्या कह देते हैं, ना बाबा ना हम नहीं परम धाम के हो सकते, हमारे तो कर्म बड़े नीचे हैं। कर्म आत्मा करती है कि शरीर? तो जो हम कहते हैं हम बड़े नीचे हैं तो भाई ये शरीर नीचे है, और ये नीच ही दुख और ये सुख दिखाने के लिए तो आत्मा को यहां लाया गया है। तो परम धाम में हमारी आत्मा जानी है सुंदरता जी, ना कि हमारे कर्म जाने हैं, और कर्मों के फल से परम धाम नहीं मिलना। वो तो कैसे मिलना है, क्षर अक्षर के पार है, पिया अक्षरातीत बिना सनमंद, बस सनमंद है तो रुक नहीं सकते, और सनमंद नहीं तो अखंड अवश्य हो जाएंगे पर परम धाम नहीं जा सकते। अब एक एक बात आपके सामने विस्तार से कह रहा हूं। जो मनोरथ मूल का हुआ नहीं पूर्ण, बिन सुध ब्रह विलास के यो रही धाख अगन। वो धाख चाहना दिल में रह गई, धाख क्यों रहे अपनी एक या इंड फेर, इसलिए वो जो चाहना बाकी रह गई थी उसको पूरा करने के वास्ते ये ब्रह्मांड तब बनाया। और फिर धनी ने मना भी किया था, देखो कि इस बार तुम माया में जा रहे हो तो अब समय कुछ लगेगा, तुम्हें जुदा जुदा तनों में डालूंगा, जुदा जुदा परिवार होंगे, तो जब तुम जुदा जुदा परिवारों में जाएंगे तो जो परिवार पहले से जिस इष्ट को मान रहा होगा, कोई वेदों को मानता होगा, कोई गीता को मानता होगा, कोई भागवत को मानता होगा, कोई रामायण को मानता होगा, कोई कुछ मानता हुए देवी को मानते होंगे, तो तुम एक मेंबर अलग तो नहीं चल सकते। पॉइंट समझिए, मानो हमारा 6-7 का मेंबर है परिवार का और उसमें हमारी एक आत्मा आ जाती है तो तड़पड़ाए, लेकिन घर वालों को तो बाहर नहीं छोड़ सकते ना, ये शुद्ध स्वप्न की है। और जब अब जागृत बुद्ध आ गई, पहचान हो गई, हम इस घर के नहीं, हम इस परिवार के नहीं, इससे हमारा शरीर का परिवार सन्मन अवश्य है और वो पालना भी है, उस कर्तव्य से पीछे नहीं हटना बाई बॉडी, और उससे सन्मन किसके साथ जोड़ना है, आत्मा। ये चीज अब बता रहे हैं कि सुंदरचा जी तारतम भले तुम्हें मिल गया है लेकिन तारतम से कुछ होने वाला नहीं। ये बात जरा समझने वाली है। कैसे सोचे फिर तारतम लेने का फायदा? तारतम आपको भाव सागर से पार कर सकता है, तारतम परम धाम नहीं ले जाए। परम धाम हम तभी जाएंगे जब अपने धनी के स्वरूप की पहचान होगी, क्योंकि जब धनी की ही पहचान नहीं तो फिर हमारी पहचान कैसे हो जाएगी कि हम कौन। जब खामंद की पहचान हो गई, दुल्हा की पहचान हो गई, तो फिर दुल्हन को बताने की जरूरत नहीं होती कि तू कौन। बट नेचुरल हो गया कि जब हम किसी को खामंद कहेंगे, जी आप मेरी आत्म के खामंद हैं, तो हमारी आत्म उनकी अंगना हो। जो गीता में भी कहा अर्जुन वो परमात्मा मिल सकता है, लभ्यस्तु भक्त्या अनन्या। जब तक बाईसोर आत्मा के साथ अनन्य प्रेम लक्षण नहीं भक्ति करोगे तब तक कर्म कांड करते रहो, आवागमन के चक्कर में जाते रहो। जिसके लिए स्वामी जी ने कहा माया आद अनाद की चली जात अंधेत अंधेर निर्गुण सुरगुण हो के सब फिरे यही के। आप चपई ध्यान से जा, तारतम ज्योत उद्योत है। तारतम जो है वो ज्ञान का एक दीपक है जो निराकार से आगे का रास्ता अवश्य दिखाता है। योग माया का इनसे क्या होए, ये स्वामी जी की वाणी। तारतम ज्योत उद्योत है, बेशक तारतम से कुछ होने वाला नहीं है। एक स्वप्न दूजा वतन ए जीव देखे दो, बस इतना भेद पता चल जाता है कि सपना क्या है और अखंड क्या है, परमधाम क्या है। अब वहां जाए कैसे? सवाल तो ये है, ज्ञान तो मिल गया तो फिर इल्म से खाली क्या हो जाने वाला है? जब तक साक्षात श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान, जिसके लिए गुरु नानक देव जी ने भी कहा वो इंसान खसम पहचाने तेषावश और नहीं पहचाने तो तू कम था, इससे बड़ी तो सख्त भाषा पंजाबी में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। कहलवाया उनसे। अब आज सुंदर साहब जी खसम शरीर का नहीं बनाना राज जी को, क्योंकि ये मिथ्या है, ये यहीं पर रह जाना है। जीव जो है वो उनकी कृपा से आत्म का संग करने से भव से पार और जिस विशिष्ट में राज जी ने डालना होगा वो डाल दे। आत्म कब परम धाम के लिए काबल हो जाती है? जब सबसे पहले अपने प्राण नाथ अक्षातीत पूर्ण ब्रह्म एको ब्रह्म जो है, जिसके लिए वेदों ने कहा ब्रह्म सत्य, उसकी पहचान नहीं हो जाती तो फिर कहने कहने से तो कुछ हो जाने वाला नहीं। और जब उसकी पहचान हो गई, सब देते सबसे पहले दिन मैंने कहा था कि शरीर के नाम हम सबको पता है, क्यों इस नाम के लिए हम जिंदगी लगा रहे हैं। और ये नाम हमको झूठा सातवें दिन दिया गया था छठी रात वाले। अब ये नाम के पीछे ही हमने सारा जीवन गवा देना और फिर उसके बाद इसी नाम से कह देंगे जी वो मर गया। जो जीव है कहां से आया था और कहां गया है कोई बता नहीं सकता। आज हम जीवित बैठे, ऊपर के शरीर का नाम तो हर एक को पता है, अंदर के जीव का नाम ये सबसे बड़ी। ये है ब्रह्म ज्ञान कि जब हमें ये पता नहीं मैं कौन हूं, आया कहां से हूं, फिर ढूंढो सारे ग्रंथ, कहीं पर ये चीज नहीं मिलेगी। आदि नहीं नहीं बता सके क्योंकि सपने के अंदर है। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बता सकते क्योंकि वो भी सपने के अंदर है और ये सारा ब्रह्मांड भी सपने में है। तो जब आदमी सपने में होता है तो असल की कोई भी पहचान करा नहीं सकता। और लिखा क्या है कि कल युग में वह पूर्ण ब्रह्म जो एक ब्रह्म है वो दुनिया में आएंगे और आ करके सारे मानव के धर्म कर्म बंधन से हटाकर, जाति पाति के झगड़ों से हटाकर, आत्म से सबको एक ज्ञान देंगे। और फिर जो मनुष्य उस ज्ञान को ले लेगा उस दिन उसका संबंध किसके साथ जुड़ जाएगा? परब्रह्म से। फिर उठते बैठते स्मरते करते किसका चिंतन किसका भजन करेंगे? उसका, कि वो मेरी आत्म कथन है। तो जब उसी का चिंतन हमारे दिल में रहेगा तो गीता भागवत और वेद कहते अंतमतः सोगता, जो आदमी जिसका चिंतन करता रहता है मरने के बाद उसका जीव वहीं पर पहुंचता है। तो ये सारी बातों से आप तारतम से बता रहे हैं कि तारतम तुमने ले लिया, तुम्हें ज्ञान तो हो गया लेकिन जीव देखे दो, एक सपना और एक वतन, पहचान तो हो गई पहुंचे कैसे, क्योंकि हम कहां तक टिके हुए हैं। अजय अब तारतम मिले परम धाम की टिकट हो गई है, अब तो हमने परम धाम चले जाना है। तो जिसके परम धाम में जाना है क्या उसको पहचाना, वो यहां उतरे राज्य महाराज प्राणनाथ जी जिसको हम शब्द कहते हैं। प्राणनाथ किसी बॉडी देह या गुरु का नाम नहीं है, प्राणनाथ निज मूल पति है और वो सबके हैं एक नहीं, इसलिए उनके प्रमाण गीता में भागवत में वेद में कुरान में बाइबल में सबसे पहले लिख रखे। वो कितने दिन रहेंगे पढ़ो बाइबल और कुरान, साफ लिखा है 6 दिन रहेंगे, 7वें दिन सारी दुनिया को जो है मुक्ति देंगे हिसाब से और जाएंगे पहले से ही, यानी कि उनके आने पर सारे ग्रंथों में उनके पहचान बराबर लिखे हुए हैं। आइए वतन देखे पीछे दूजी दोएली लाजो करे अभ्यंग के साथ, जब हमें वतन की पहचान हो जाएगी तब पता चल जाएगा कि ब्रिज और रास में हमने क्या किया था, खाली लीला की थी, उससे हमारा अब कोई भी मतलब नहीं है। ए सब याद आ रही इत दोए दूसरी, ये दोनों दूसरी लीला, अब एक कौन सी देवचंद जी की और दूसरी लीला प्राणनाथ जी की, ज्यों की त्यों है। जिस तरह ब्रिज की लीला अज्ञानता वाली थी और रास में कुछ होश थी, इसी तरह सतगुरु देवचंद जी के समय में निज बुद्ध नहीं आई इसलिए 313 की वासना भी परस्पर करके बताया, पर परम धाम के राज्य की पहचान ना होने से 313 की 313 खुल गई। अब ये सूर्य का ज्ञान लेके स्वामी जी आए और कहते हैं कि अब चल, तब क्या कहा, जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सिर्फ सुहागन योग, तीन लीला चौथे घर की, तीन को लीला बताया, किसको, ब्रिज को, रास को और देवचंद जी को, वो लीला ही थी। अब घर की लीला यहां पर है क्योंकि जागृत बुद्ध का ज्ञान भी आ गया और निज बुद्ध का भी ज्ञान आ गया, तन हमारे सपने के रहेंगे लेकिन शुद्ध हमारी परम धाम की हो जाएगी, बस सीधा परम धाम बिल्कुल एक एक सीढ़ी बसीढ़ी आपके सामने खुलासा करके रख रहा हूं। याद आवे सारे सुख और जीव नैनो भी देखे कि अब क्या है, इससे क्या होगा, सारे सुख परम धाम के भी याद आ जाएंगी और चितवन से जीव भी देखेगा, हम चितवन करते हैं श्रोता जाती है कि नहीं जाती, किसके बल पर, जीव के बल पर। या लीला की बातें इत जुबा कहीं ना जाए, सुख दो इतलिए मनोरथ पुराए, अब राजी महाराज ने सारे जो हमारे मन की कामना थी वो यहाँ पर पूरी कर दी। या लीला को जो बल वचन सब कहती, स्वामी जी कहते अब ये लीला जो हो रही है परम धाम की वाणी वाली ये सारी दुनिया कहे, वो वक्त आ रहा है, कल बताया था किस तरह से कि जागृत बुद्ध कहाँ जाएगी, वैकुंठ में जाके विष्णु को तारतम देके पहचान करा दी, और जैसे उनको पहचान हुई नहीं, सब के अंदर कौन बैठा है, हैं क्षरा सर्वाणी भूतानी, वो विष्णु भगवान का अंश है, तो विष्णु भगवान सबको लेकर के उठेगा और भवसागर से जीव सिर्फ समान नहीं, आल मकान और जो कुछ गाड़ियां पाड़ियां रत्नों राज जो कुछ भी है सब एवरीथिंग हियर बाय बॉडी, बॉडी से लगा हुआ सामान सब यही रहेगा, जी वहां चले जाएंगे नए तन दे दिए जाएंगे और उनको श्री प्राणा जी दर्शन दे के सबको 8 विश्वों में अखंड कर दे और आत्मा परम सीधी कर देगा। वचन मायने देख के सब सुख लेसी, सारे संसार को ये सुख होगा जब सबके पास जागृत बुद्ध का ज्ञान योग माया के ब्रह्मांड होगा, धन धन ब्रह्मांड ए हुआ, समझे कहते हैं ये कलयुग का जो युग है और भरत खंड है ये ब्रह्मांड, ये अखंड हो गया, सारी दुनिया अखंड हो गई, धन धन युग सो कलयुग जहां लीला प्रचंड के जहां पार ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने परम धाम का ज्ञान दे करके जिसके लिए दुनिया आज दिन तक अज्ञानता में थी वो सारी पहचान कराई। केतक साथ आया दूजे सब कोई दाना दाना पूरी नौतन नहीं जहां लीला उदय हुई। सबसे पहले ये लीला उदय कहां हुई? नौतनपुरी में। धन धन धनी साथ सो धन धन श्री राज्य महाराज जो अपने सुंदर साथ के साथ धन धन तारतम ज्ञान जिसने आकर के सबको जागृत बुद्ध का ज्ञान दिया पूर्ण प्रकाश लिया के सुख दिए हम स्वामी जी ने लाके सब विद्वतन सहित सारे परम धाम के आठों सागर 25 पक्ष सात विकर्ण रंग महल नौ भूम दसवीं काशी एक एक भूम का सुख यहाँ पर हम बैठे गाते। जो आज दिन तक दुनिया अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता हम सुबह ही उठ के कहते हैं श्री राज श्री जगरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान ताकत जरंगो सिंह अजम तिनके छह पाए छह डांडे एक डांडे के दस रंग जबेरे के जल कर फूल लाल माने के कमल कैसे नीलवी की पागली छत्र बेचारा सब जबेरे के जाल उसके बाद सिंहासन श्यामा जी का श्रृंगार श्यामा जी का श्रृंगार बोलते हैं राजी का श्रृंगार बोलते हैं उनको तीसरी भूमि पर ले जाते हैं और वह सुंदर था। अब देखो इस वाणी का इंपॉर्टेंस क्या है और संसार के ग्रंथ भी दोनों क्या आज दिन तक इस दुनिया के अंदर पारब्रह्म का स्वरूप लीला परमधाम किसी ने बताई? इतने कह दिया जी स्वर लीला अद्वैत अक्षराते वो अक्षर से परे हम कह रहे और यहां तारतम्य मिलने से राज्य की जैसे जैसे पहचान हो रही है सुबह उठ करके उनका स्वरूप का उनका श्रृंगार का उनकी लीलाओं का सब वर्णन कर रहा है हमारा जीवड़ा। विचार करो इस वाणी की इंपॉर्टेंस क्या है क्यों ये वाणी पढ़नी चाहिए किस वास्ते इसको लेना चाहिए। भाई जिनको ये चीज अच्छी ना लगे अरे यार मरेंगे कर्मकांड में आवेंगे जाएंगे कौन अपने बच्चे अभी जबरदस्ती तो किसी के गले थोड़ा बढ़ता जाता है। अब पहले दो लोग के बिन कुछ खर्च किए बिन कुछ योग साधना के बिना किसी तपस्या के बिन घर को छोड़े और बड़े बड़े ऋषि घर बार छोड़ के जंगलों में चले गए वहां तपस्या करते करते मिट्टी हो गए एक शब्द नहीं मिला जो सृष्टि के नाथ मालकन लक्ष्मी जी है एक शब्द नहीं मिला इतनी बड़ी तपस्या करने पर और हमें क्यों मिल गया क्योंकि ब्रह्म सृष्टि आई है उनकी सोबत से और फिर हमें अब पहले क्यों मिल रही है बाद में तो सबको मिलना है पहले किसको मिलना है पहले सुख संयम जो परम धाम की आत्मा है ये राज्य को बताए किस स्थान में कहां पर किस परिवार में है वही निकाल निकाल के लाते हैं और वही राज्य महाराज की मेहर कृपा हमें वाणी सबको सुना रही है। आइए जो जीव नींद छोड़े नहीं जान दो। अब आत्माओं को कह रहे हैं कि सुंदर साहब जी तुम्हें ज्ञान होने के बाद फिर भी जरा तुम्हारे अंदर कभी का आलस रह जाए ना जो जीव जिस जीव पर तुम्हारी आत्मा बैठी हुई है जो जीव नींद छोड़े नहीं पिलाइए वाणी। क्या करो वाणी पिलाओ से तो जैसे जैसे वाणी सुनेगा और जीव की नींद टूटेगी तो यहां कौन चाहता है कि मेरा बेड़ा गर्क हो जाए। हम लोग सब अंदर आते हैं कभी आगे गए राजीव राय मेरा बेड़ा गर्क कर कौन सा ऐसा जीव होगा जिसको घरों बैठे पारब्रह्म का पहचान हो और उनके साथ संबंध जुड़े कौन नहीं अभिलाषा करेगा कौन नहीं धन धन करेगा कि धन है शुक्र है राज्य महाराज आपकी कृपा से वाणी मिल रही सुंदर था जी विचारिए एक एक शब्द को। जो जीव नींद छोड़े नहीं पिलाइए वाणी ल्याए प्यू वतन से बल माया जानी। लगी राजी महाराज भी इस वाणी को क्यों लेके आया है क्योंकि उन्होंने पहले देखा कि माया बहुत बल वाली है इसकी जहर यदि कोई काट सकती है तो परम धाम की वाणी ही काट सकेगी इसलिए राजी महाराज इस वाणी को लेके आए नहीं तो ब्रिजर रास में आए नहीं लाए। अब देखा कि इस तरह से तो जितनी बार खेल बनाते रहेंगे इनकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या इसी चक्कर में पड़े रहेंगे नहीं इस माया की जहर उतार कर ब्रह्म सृष्टि को यहीं पर बैठे शुद्ध लगे कि हम परम धाम में बैठे हैं इसलिए जागृत बुद्ध और निज बुद्ध ला करके ब्रह्म सृष्टि के वास्ते रखी है। जहर उतारने साथ को क्यों लाए कि जो सुंदर साथ पर भी माया का जहर चढ़ा हुआ है उसको उतारने के वास्ते ल्याए तारतम बेहद कारस शर्वने पिलावे हम। स्वामी जी कहते हैं तारतम दे के जागृत बुद्ध और अब परमधाम की वाणी उनके कानों में डालने से धीरे धीरे सब माया की जहर उतर जाएगी और अपने धाम धनी की अपनी और निज घर की पहचान हो जाएगी। ए रस शर्वनो जाके जरे, ए रस जिसके कानों में पड़े झरे, मैंने पढ़ना जो रोज इसको बैठ करके सुनेगा पढ़ेगा, ताए क्या करे जहर, तहां फिर उसको माया कुछ नहीं कर सकती। स्वप्न ना होवे जागते देखी ताए वेर, तो जब सपने में आदमी उठ के बैठ जावे तो फिर उसको सपना हो सकता है क्या? स्वामी जी कहते ये वाणी क्या कर रही है, सपने के अंदर भी उठा करके होश में दे देती है। बस कितना पता लग जाता है कि ओहो हम तो माया देखने आए और घर तो हमारा परमधाम है, बैठे हम कहाँ हैं, राज्य मराय के चरणों में मूल मिलावे में वहां हमारा तन है, ये तन हमारे सपने वाले हैं। अब जब ये सुध आ जाए कि ये तो सपना है,